बेशतर इसके के बात शुरू की जाए, आज एक सवाल पूछा गया कि जी ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको जेन नशीन कैसे किया जाए। हेलो, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज एक सवाल पूछा गया कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इसको जहन नशीन कैसे किया जाए। ये सवाल मैं समझता हूँ कि सबकी तरफ से था, यानी ये अब इसका बड़ा सिंपल सा वो जवाब मैंने वहाँ पोस्ट तो किया था कि हमें तालिब-ए-माना अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो जहन नशीन हो जाएगा। और तालिब इल्म क्या करता है, नोट्स बनाता है। आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, तो आपने और हमने स्कूलों कॉलेजेस में क्या सीखा कि जो भी हम पढ़ते हैं उसके नोट्स बनते हैं। देखिए ना, आप साइंस कैसे पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने के लिए लाजिम है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनको लिस्ट आउट कर लें। जब हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं तो वो बजाय पूरी किताब या पूरा चैप्टर बार बार पढ़ने के, आप सिर्फ अपनी नोट की हुई डेफिनेशंस को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, वो जहन नशीन होती चली जाती हैं। मसलन अब हमने इल्म हजूरी का पढ़ा, तो उसकी जो भी डेफिनेशन आपने वहाँ पे इस किताब में, इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ी, उसको वहाँ अपने दो चार जुमलों में नोट कर लें। अब जैसे इल्म हसूली का पढ़ा, तो वो वहाँ से पढ़कर आपने देखा ना, उसमें किसी की दूसरे के थॉट्स की मिलावट नहीं हुई, आमेजश नहीं हुई। अब उसके बाद आपने पढ़ा कि वहदत किसे कहते हैं, कसरत किसे कहते हैं, या ये जो हमारे बाकी वो जो चैप्टर थे, लोहे महफूज किसे कहते हैं, फिर ये लोहे दोयम क्या है, ये साबिता क्या है, ये आयान क्या है, ये जवैया क्या है, ये देखे ना, ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं। तो जब तक यही हमारे जहन में मतलब याद भी होंगी तभी आप इनको समझ भी सकेंगे कि ये रूह आज़म क्या है, रूह इंसानी क्या है। ठीक हो गया जी। अब ये रोया की सलाहियतें क्या हैं, ये कशफुल जू क्या है, ये जू किसे कहते हैं, ये आलम जू क्या है, देखिए कितनी डेफिनेशन है। ये इल्मुल कलम क्या है, इसी को तजल्ली ज़ात का इल्म कहा है। ये इस्माए इलाहिया क्या हैं, ये 11,500 फ्रीक्वेंसियाँ हैं और इसी को तजल्ली सिफात का आलम कहते हैं और इसी को इल्म लौह कहते हैं। फिर नस्बत वहदत क्या होती है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आप नोट करें, अपने एक कॉपी खरीदें, एक रजिस्टर बनाएं, उसमें ये नोट करें, याद कर लेंगे आप, यकीन मानिए ये किताब आपको हलवा लगेगी। ये जिसके बारे में ये बात मशहूर हो गई कि ये बड़ी मुश्किल किताबें, कौन सी, एक कुरान हकीम और एक लौह कलम, अला मुर्शिद करीम उसकी शरह फरमा रहे हैं और कितने आसान अल्फाज में फरमा रहे हैं, वो आपको अब तो अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है ना जी। तो हैविंग सेड दिस, आई होप के आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो आज हम खैर से शुरू करने लगे हैं जी लेक्चर नंबर 5। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कसरत का अजमाल, कसरत यानी के मखलूकात, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो वहदत है, तो ये उसका अजमाल यानी एक ब्रीफ हिस्ट्री या ब्रीफ अब्रेज्ड स्टेटमेंट आ रही है, या उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कोर्स है, एक मुख्तसर बयानिया। इस मुख्तसर बयानिए का नाम है अजमाल। अब बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, ये पेज नंबर 43 पे देखें, फिर एक टेबल या एक नक्शा सा है। अब इसका टाइटल है अल्लाह जल्ले जलालहु। अब यहाँ पे अल्लाह जल्ले जलालहु आप मैंने अर्ज किया तो आपके जहन में कोई ख्याल गुजरा कि जल्ले जलालहु क्या है, जलाल किसे कहते हैं? हमारे आपके जहन में जलाल का मफहूम ये है कि जी वो बड़े गुस्से में होगा। हालांकि जलाल कहते हैं जिसके इल्म की वजह से आपकी मतलब है पेश ना चले, आप उसके सामने खुद को उसके इल्म के सबकत बरसरी की वजह से महदूद समझें, ये मतलब है अल्लाह जल्ले जलालहू। मैं छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने मोहब्बत के साथ मखलूक को पैदा किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। ये बात है हदीस शरीफ की, यानी ये हदीस कुदसी, हदीस कुदसी है। अब इसमें तो गौर करें, मैं छुपा हुआ खजाना था, यानी कुंतु कंजुन मख्फियन, मख्फी का मतलब है समथिंग दैट रिक्वायर्स एक्सप्लोरेशन, जिसको आपने डिस्कवर करना है। अब हमने कहा जी वो छुपा हुआ है तो मैं कौन होता हूं उसे जाहिर करूं? नहीं, एक एक लफ्ज के अंदर उतरना सीखेंगे। बस मैंने मोहब्बत के साथ मखलूक को पैदा किया। देखें, मखलूक को अलहदा और उस मोहब्बत को अलहदा, ये मोहब्बत भी एक तख्लीक है जिसके साथ मखलूक को पैदा किया, इसलिए मखलूक आपस में मोहब्बत करने की पाबंद करार पा रही है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है। मैंने मोहब्बत के साथ मखलूक को पैदा किया, यानी मखलूक और मोहब्बत, ये दो तख्लीकात हो गई। आप गौर करें कि इन दोनों का आपस में क्या रब्त है। जब आप एक खालिक की मखलूक होने के नाते दूसरी मखलूक को बजाय उसे एहतियाजात और तवक्कुआत वाबस्ता करने के, उसको ममता की नज़र से देखते हुए उसे प्यार करेंगे, तो क्या होगा? आपके अंदर जब ममता जागेगी, दूसरी मखलूकात के लिए प्यार जागेगा, तो क्या होगा? आपके अंदर एहसास नहीं होगा कि अल्लाह कितना प्यार करता है मुझसे। दूसरी आयत, खुदा का अमर यह है कि जब वो किसी चीज के पैदा करने का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। ये कुरान की वो आयत, इन्नमा अमरहु इज़ा इरादा शैन अन यकूल लहू कुन फयकून। तीसरी आयत है, बेशक आदमी पर एक वक्त वो गुजरा कि कहीं उसका नाम भी ना था। अब इन तीन बातों को पेशे नजर रखते हुए हजूर मुर्शिदे करीम कुन और फयाकून की शरह फरमा रहे हैं, अल्फाज में नहीं, एक नक्शा सा ड्रॉ करके, कि कुन क्या है, उसके बाद नीचे आए तो देखें ये दोनों आपस में मिले हुए भी हैं, और नीचे कुन के नीचे अलस्तो बे रब्बिकुम, जब अल्लाह ने कुन कह के रूहें पैदा की, इसकी डिटेल हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अलस्तो बे रब्बिकुम बे रब्बिकुम, साथ तुम्हारे रब के, यानी क्या नहीं हूं मैं तुम्हारा रब, इसका लफ्जी मतलब है, क्या नहीं है यहां सब कुछ तुम्हारे रब के साथ? और वैसे सवाल ये है कि क्या नहीं हूं मैं तुम्हारा रब, तो क्या आगे से कहा मखलूकात ने जिसने फयाकून जो चीजें हुई उन्होंने कहा कालू बला। अब ये अलस्तो बे रब्बिकुम जब पूछा गया तो वो आलम में हैरत पैदा हुआ, और आलम में हैरत में मौजूद की वजह से मौजूदात में हरकत का आगाज हुआ। हैरत का मतलब है कि आप तजस्सुस में चले गए, तो जहन ने हरकत की। अब मौजूदात वहां कुन कहने के नतीजे में जो मौजूदात बनी वो साकत हालत में, और क्या हुआ कि जब मौजूदात में हरकत का आगाज हुआ, जब अल्लाह ने अलस्तो बे रब्बिकुम कहा, उनके کانوں میں یہ سماعت, یعنی ان کی سماعت متحرک ہوئی, ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے, یا اس کا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ صرف الفاظ نہیں پڑے, مفہوم سمجھ میں آیا, یعنی سماعت کے بعد فہم متحرک ہوئی, اس نے تجسس کو بھڑکایا, مہمیز کیا. وہ تجسس نے کہا مجھے کس نے پکارا, اور وہ مخلوق کے اندر جو صفت بصارت ہی وہ ایکٹیویٹ ہو گئی. صفت بصارت کے ایکٹیویٹ ہونے سے انہوں نے پھر جانچا, پھر تولا کہ یہ جو پوچھ رہا ہے یہ ہے کون. تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ بھئی یہی ہمارا بنانے والا, ہماری اس زندگی کے سارے وسائل کو پرووائڈ کرنے والا یہی تو ہے. تو انہوں نے پہچان کر کہا کہ بلا, جی ہاں, یعنی پہچان کر ربوبیت کا اقرار کیا. تو یہاں سے کیا ہوا کہ موجودات ساکت حالت میں ہے تو وہ وحدت کہلا رہی ہے, جب موجودات نے خالق کو پہچان کر اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تو وہ کثرت ہو گئی. یہ وحدت جو ہے یہ لامکانیت ہے, یعنی وہاں پہ کوئی سپیس نہیں ہے. اور کثرت جو ہے یہ مکانیت میں قید ہے, سپیس میں قید ہے, مکانیت. تو یہ تخلیقات جو ہیں یہ لامکانیت سے شروع ہوتی ہیں اور مکانیت میں آ کے اپنا ڈسپلے کر کے واپس لامکانیت میں لوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, اس نقشے کی وضاحت ہو گئی. پیج نمبر 43 پہ تھا. تو اب ہم اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 42 پہ. کائنات میں موجود تمام اشیاء, خواہ وہ جزو لا تجزا کی حیثیت رکھتے ہوں, آپ اس کو سمجھ لیں ذرا, جزو لا تجزا, ایسا جز جس کا تجزیہ نہ ہو سکے, انگریزی میں اسی کو ایٹم کہتے ہیں. اے لا ٹم, جو ٹوٹ نہ سکے. اب دیکھیے, جب ہم لفظ کائنات بولتے ہیں تو کائنات پوری کی پوری ایک جزو ہے. اگر آپ اس کے ٹکڑے کریں گے تو کائنات نہیں رہے گی, وہ کرے کہلائیں گے, کہکشانی نظام کہلائیں گے, ستارے اور سیارے, چاند اور سورج کہلائیں گے. غور کریں, اب جب آپ کہتے ہیں یہ ایک شخص آپ کے سامنے, آپ کہتے ہیں یہ زید ہے, تو زید جب کہتے ہیں تو وہ ایک جزو لا تجزا ہوتا ہے. آپ اس کو انالائز کریں گے, یہ زید کی آنکھیں ہیں تو اس کی آنکھیں زیر بحث آ جائیں گی, پھر آنکھ بذات خود ایک جزو لا تجزا بن جائے گی. تو یہ اس جزو لا تجزا کی ترکیب حضور قلندر باب اولیاء نے استعمال کی ہے لوح قلم میں. اب یہاں پہ حضور مرشد کریم اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کائنات میں موجود تمام اشیاء, خواہ وہ جزوے لا تجزا کی حیثیت رکھتی ہوں. دیکھیں نا, اگر آپ ایک سائیکل کہتے ہیں, بائی سائیکل کہتے ہیں, تو بائی سائیکل کہنے سے آپ کے ذہن میں سب کچھ آتا ہے. آپ اس کے پیڈل نکال دیں یا اس کا پہیا نکال دیں یا اس کی چین اتار دیں تو وہ سائیکل نہیں کام کرے گی, چین بذات خود ایک جزوے لا تجزا بن گئی, پہیا ایک جزوے لا تجزا بن گیا. ہر چیز میں یہ قانون لاگو ہے. تو ان کی حیثیت روحانی ہو یا وہ خارجی حالات میں شکل و صورت میں ظاہر ہو, اب کیا مطلب ہے کہ ہر چیز چاہے وہ روحانی سطح پہ ہو یا خارجی حالات میں شکل و صورت میں ظاہر ہو. دیکھیں جب ہم سورج کہتے ہیں تو ایک سورج وہ ہے جو ہمیں باہر دکھتا ہے آسمان پہ چمکتا ہوا, وہ خارجی ہے, لیکن ایک سورج ہمارے باطن میں بھی ہے اور اسی کی بنا پہ ہم اسے جانتے ہیں. تو یہ روحانی حیثیت اس کی کیا ہوئی کہ وہ ہمارے اندر ہے. یہ سب, یعنی کہ کوئی چیز چاہے وہ باطنی طور پہ اندر موجود ہے یا خارج میں موجود ہے शक्लो सूरत में जाहिर है या शक्लो सूरत के साथ कहीं अंदर कयाम पजीर है, ये सब अल्लाह ताला के इरादे का अक्स है। यानी सारी कायनात अल्लाह ताला के इरादे की शक्लो सूरत है। ये सारी कायनात क्या है? ये अल्लाह ताला के इरादे की शक्लो सूरत है। अल्लाह ताला के जहन में, अब हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम मजबूर हैं जहन का लफ्ज इस्तेमाल करने में, क्योंकि हमें अपने जहन का नहीं पता। तो बहरहाल, तो जहन जो है वो थिंकिंग प्रोसेसर कह लें आप। तो अल्लाह ताला के जहन में कायनात और कायनात के अंदर मौजूदात की तस्वीर और फिर उन तस्वीरों की जरूरियात जिस तरह मौजूद थी, वो अल्लाह ताला के इरादे के साथ तख्लीक हो गई। यानी अल्लाह ताला के इरादे ने एक तरफ क्या किया, कायनात बनाई, कायनात के अंदर मौजूदात की तस्वीरें बनाई, और फिर उन तस्वीर को हरकत में लाने की जितनी जरूरियात जिस तरह मौजूद थी या होनी चाहिए थी, अल्लाह के इरादे के तहत वो भी साथ ही तख्लीक हो गई। अब यहां से तख्लीक के दो रुख हो गए। एक रुख जिससे आप और मैं वाकिफ हैं वो है जाहिरी शक्लो सूरत, और एक रुख वो है जिसने उस जाहिरी शक्लो सूरत को तरतीब दिया है। देखे ना, एक शक्लो सूरत तो आपके और मेरे सामने है। फर्ज करें आप और मैं एक पौधा देख रहे हैं, आप कहते हैं ये इसकी जाहिरी शक्लो सूरत है, लेकिन उसका एक रुख वो है जो इस जाहिरी शक्लो सूरत को तरतीब दे रहे है। पहले वो बीज था, बीज से रफ्ता रफ्ता वो ग्रो करता 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 फूल तक पहुंचा, फिर बीज बना। देखें जरा, ये जाहिरी शक्लो सूरत को कौन कर रहा है? भाई उस बीज के अंदर एक माइक्रोफिल्म काम कर रही है। अब वो माइक्रोफिल्म किसने बनाई? वो इस बात को अल्लाह ताला कुरान पाक में इस तरह फरमाते हैं, हमने मां के पेट में एक तस्वीर बनाई, जिस तस्वीर का बजाहिर पहले से वजूद ना था और ना ही उस तस्वीर के बारे में मखलूक को कोई इल्म था। रहमे मादर में जब ये तस्वीर कशी की गई तो ऐसी हरकत वाकया हुई कि जिस हरकत को हम जाहिरी आंख से नहीं देख सकते, उस हरकत में दरअसल अल्लाह ताला की वो सिफत काम कर रही है जो अमरे रब्बी के बाद शक्लो सूरत बन गई। अभी मैंने क्या लफ्ज अर्ज किया, माइक्रोफिल्म। किसने बनाई? अमरे रब्बी। वो माइक्रोफिल्म जो है वो बच्चे को एक शेप दे रही है, यानी वो माइक्रोफिल्म जो है डिस्प्ले होना शुरू हो गई। अब सब जानते हैं कि गोश्त वो उसका लोथड़ा जब शक्लो सूरत इख्तियार कर लेता है और उसके अंदर आंख नाक कान और दिमाग बन जाता है, तो वो सुनता भी है, बोलता भी है, देखता भी है और महसूस भी करता है। अब यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, कब? मां के पेट में तो नहीं करता। वो बोलता भी है, देखता भी और महसूस भी करता है। ये कम से कम ये तीन काम जो हैं वो रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली इवॉल्व होके करता है ना। अब इन तमाम महसूसात के वो साथ पैदा होता है। पैदा होने के बाद एक जाब्ते और एक कानून के साथ उसकी नशो नुमा होती रहती है, और ये नशो नुमा उसे उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां फर्द को बाशऊर और बाअकल कहा जाता है। लेकिन साथ ही ये बात भी हमारे सामने है कि बाशऊर आदमी जब मर जाता है तो उसके बावजूद के आंख नाक कान और दिमाग सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन वो ना देखता है, ना सुनता है, ना महसूस करता है। बस मालूम हुआ कि गोश्त पोश का जिस्म किसी के ताबे है। देखिए वही पहली बात कि जिस्म रूह का लिबास है, उसी बात को एक नए जाविये से वाज़े किया जा रहा है हमारे शऊर के लिए। दूसरी बात, अच्छा सॉरी, बस मालूम हुआ कि गोश्त पोश का जिस्म किसी के ताबे है, तो हरकत का तस्वीर के साथ ये ताल्लुक ही दरअसल मखलूक को शक्लो सूरत अता करता है। अब हरकत कहाँ है? उस माइक्रोफिल्म से निकलकर हरकत जो है वो बाहर दूसरी स्क्रीन जो है उसके ऊपर वो उसको मूव कर रही है, मूवमेंट हो रही है। यानी तस्वीर के साथ हरकत का जो ताल्लुक है, ये ताल्लुक मखलूक को शक्लो सूरत अता करता है। अब दूसरी बात जो नोए इंसानी के तजर्बे में, कि नोए इंसानी का हर फर्द अपना एक अलग इदराक रखता है। ये अलग अलग इदराक ही उस तस्वीर को जिसे अल्लाह ताला ने माँ के पेट में बनाया, दूसरे के लिए शनाख्त और पहचान का जरिया है। यानी माँ के पेट में जो जो तस्वीरें बनी, अब उस तस्वीरों में जो डिफरेंस है वो इसलिए ताकि दूसरे उसको रिकग्नाइज कर सकें। बात चली थी अल्लाह की पहचान की, यहाँ पे दूसरी मखलूकात को पहचान की खातर आपको डिफरेंट, यानी ताकि आप दूसरी मखलूकात को पहचान सकें और वो आपको पहचान सकें। इसीलिए हर फर्द को जब हम उसका नाम लेते हैं तो एक टिपिकल शेप हमारे जहन में, एक टिपिकल फॉर्म हमारे जहन में, या उसके टिपिकल फेस या उसकी शक्लो सूरत, फॉर्म एंड फिगर दोनों हमारे जहन में आते हैं। अब वहदत और कसरत के तस्करे में ये बात बताई जा चुकी है कि अल्लाह ताला से मखलूक का एक रिश्ता कायम। उस रिश्ते में चार हालतें ऐसी हैं कि मखलूक और खालिक का बराह रास्त रिश्ता कायम नहीं होता। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जो खालिक और मखलूक के दरमियान बराह रास्त कायम है। मखलूक उस रिश्ते को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन रिश्ता अपनी जगह बरकरार रहता है। अब रिश्ते की तारीफ यह है कि बंदा अपनी इंफरादियत कायम रखने के लिए किसी हस्ती का मोहताज है। ये जो अलग अलग तस्वीर है ये इंफरादियत हुई। अब इंफरादियत को कायम रखने के लिए हमें कुछ एहतियाजात का सामना होता है। तो जिस हस्ती के हम मोहताज हैं उससे क्या पता चला? किसी हस्ती का मोहताज होना ये जाहिर करता है कि मेरे अलावा भी कोई हस्ती, और जो पहचान का जरिया है, यानी कि हम दूसरों को भी उसी की वजह से पहचान रहे हैं और खुद को भी उसी पहचान उसी की वजह से पहचान रहे हैं, तो ये जो पहचान का जरिया और यही पहचान हमें अपने अलावा दूसरी चीजों का इदराक अता करता है। अब पहचानने के दो तरीके, एक तरीका ये कि हम अपने अलावा किसी दूसरे आदमी को देखते हैं। पहले हम खुद को जिस्मानी खदोखाल के साथ, फहमो इदराक के साथ पहचानते हैं, साथ ही अपने सामने दूसरे शख्स या दूसरी मखलूक को पहचानते हैं। दूसरी तर्ज में पहचानना या जानना इस तरह है के जहन में या इंसान के बातनी रुख में अल्लाह ताला के इरादे की तमाम तस्वीरें महफूज हैं। सुना आपने? दूसरी तर्ज, एक तर्ज कि हम किसी को देखते हैं तो उसको अपने साथ कंपेयर करते हैं, और दूसरा जानना क्या है कि हमारे जहन में यानी अंदर के रुख में अल्लाह ताला के इरादे की तमाम तस्वीरें अल्लाह ने खुद महफूज कर दी होंगी। यानी हमें लोहे महफूज के साथ कनेक्ट किया हुआ। अब जाहिरी वजूद में जब कोई शक्लो सूरत हमारे सामने आती है तो हम उसे शनाख्त कर लेते हैं। इसी तरह जब बातनी तौर पर कोई तस्वीर हमारे सामने आती है तो हम उसे बातनी तौर पर पहचान लेते हैं। अब आपने सुना होगा कि कई लोग ये कहते हैं, बताते हैं कि ख्वाब में उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम नबी आखिर जमान की ज़ियारत फरमाई। हाँ या नहीं? अब बताइए कि वहां पे उन्हें कैसे आइडेंटिफाई हो गया कि ये वो है, और सारे इज्जत करते हैं, बिल्कुल इस बात को दुरुस्त मानते हैं कि ये वाकई। क्या मतलब है कि हर तस्वीर हर बंदे के अंदर मौजूद है, ये है उसका राज। तो जब वो कोई तस्वीर हमारे सामने आती है तो हम उसे बाकी तौर पर पहचान लेते हैं। अभी इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं मैंने निज़ामुद्दीन औलिया को देखा, कोई कहता है मैंने शकी शाहबाज कलंदर को देखा, कोई कहता है मैंने बड़े पीर साहब को देखा, कोई कहता है मैंने फलां पीर साहब को देखा, तो हालांकि वो जिंदगी में कभी नहीं मिला। तो वो बातनी तौर पे अगर कोई तस्वीर सामने आती है तो उसको हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं, उसका नाम कैसे बोलते हैं? तो ये बात भी समझने की है कि हर जाहिर रुख, हर जाहिर रुख बातिन का अक्स है, यानी जो कुछ भी बाहर है वो उसके अपने बातिन का अक्स है। यही बात मैं अर्ज कर रहा था कि बीज पूरा पौधा कैसे बना, बीज ने अपना बातिन बाहर डिस्प्ले किया, उसके बातिन में क्या था, पूरे बीज की सॉरी वो पूरे दरख्त की शक्लो सूरत, पत्ते शाखें सब कुछ, जड़ें, उसके रंग, उसके रूप, उस पर क्या क्या, कौन से मौसमों में उसने खिलना है, कौन से में उसने मुरझाना है, ये सब कुछ उसके अंदर उस माइक्रोफिल्म में मौजूद था, वो वहां से डिस्प्ले होता रहा, यानी कि वो पौधे का बातिन था। तो हर जाहिर रुख बातिन का अक्स है, जब तक कोई शय बातनी रुख के साथ मौजूद नहीं, जब तक कोई शय बातनी रुख के साथ मौजूद नहीं होगी, जारी शक्ल सूरत में नजर नहीं आएगी, यानी सारे का सारा जाहिरी रुख बातनी रुख का अक्स है। मेरा ख्याल है यही रुक जाते हैं। यानी पहले हमने देखा कि कायनात किस तरह काम कर रही है, अल्लाह के इरादे से सामने आ रही है, किस तरह वो अल्लाह के इरादे की वजह से बन रही है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि हर शय के अंदर अल्लाह का इरादा किस तरह काम कर रहा है। देखो क्या जी, मेरा ख्याल है यहां तक रुक जाते हैं या लाइट चली गई है इसलिए मजीद ये नहीं पढ़ सकते। ठीक हो गया सर? वैसे भी यहां रुकने का इरादा कर ही लिया। चलें, खुश रहिए जी, बहुत नवाजिश। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, अल्लाह खुश रखे।